ओम शांति। हम सभी के बीच में पधारे हुए देवी भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी को हम और आप सभी के ओर से आदरणीय आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आप गुलबर्गा उपक्षेत्र में ईश्वरीय सेवा का बीज बोने का श्रेय प्राप्त एक सीनियर भ्राता है। अपनी 18 वर्ष की उम्र में कॉलेज स्टूडेंट होते बेंगलुरु में लौकिक पढ़ाई के निमित्त गए, वहां ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। 1969 में हिंदी शासक के साथ संस्कृत में गीतालंकार डिग्री प्राप्त किए हैं। आप गुलबर्गा सब जोन की डायरेक्टर हैं और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सोशल सर्विस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप ईश्वरीय प्रेम से भरपूर पालना देकर रूहानी सुंदर बगीचा बनाने की विशेषता से संपन्न हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई स्थानों में बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने हैं। अभी 5 एकड़ जमीन में रिट्रीट सेंटर अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में निमित्त बने हैं और कुशल वक्ता भी है। तो आइए अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता प्रेम भाई जी से खुशी के खजाने से भरपूर स्थिति को हम कैसे अनुभव करें। ओम शांति।
ओम शांति। हम शिव बाबा के ज्ञान सागर के प्रेम सागर के बच्चे हैं और बच्चों की तरह बाप हम बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं। सारे विश्व में आज हजारों सत्संग होते, लाखों भाई बहने उसमें जाते हैं। यदि जो सत्संग में गए हुए लोग हैं उनसे हाथ उठवाएं कि इनमें दुखी कितने हैं, तो मैं समझता हूं मेजॉरिटी लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए ही वहां आते, या तो दुख को दूर करने के लिए आते या उस गुरु के आशीर्वाद से खुशी पाने की इच्छा से आते। सारे विश्व में हम समझते हैं दुख और अशांति का माहौल है, परंतु एक ऐसा भी संसार है, एक ऐसा भी परिवार है, एक ऐसा भी ईश्वरीय सत्संग है जहां यदि हाथ उठवाए कि सब खुश हो तो सभी हाथ उठाएंगे। हम लोगों में से कोई है दुखी यहां जो बैठे हुए हैं इतने लोग? हम दुखी हैं, बाबा से मिलने आए हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जो दुख लेकर के भगवान बाप के पास आया हुआ होगा, क्योंकि उसकी झोली खुशियों से भरी हुई है, क्योंकि उसको ये पता है कि जो हमको मिला वह हमें खुशियों से भर देता, शांति से भर देता, आनंद से भर देता। और भरने का साधन है ज्ञान, समझ, अंडरस्टैंडिंग। और सबसे पहले जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको तीसरा नेत्र मिलता है, और तीसरा नेत्र जब मिलता है तो मनुष्य की खुशी का पारावार नहीं होता, क्योंकि सारी दुनिया में या तो मनुष्यों को दोनों आंख नहीं है या एक आंख नहीं है, पर हमको तीन आंखें मिलती हैं। एक एक्स्ट्रा सुपर सेंसरी आंख हमको मिलती, ज्ञान का नेत्र हमको मिलता, जिसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि इस पांच तत्व के मिट्टी के पुतले के बीच एक चैतन्य आत्मा है। ऐसे गीता में आत्मा के बारे में बहुत बोला कि आत्मा अक्लेद्य अशोष अमारोत अदय्य है, न जलती न कटती न डूबती न मरती, परंतु यह उसमें नहीं बताया गया कि वह जो आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है वही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा नहीं बताया। अब हमको पक्का पता है कि हम अजर अमर नित्य शाश्वत अविनाशी आत्मा है, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम नष्ट नहीं होते, तो इस कारण से भी हमारे खुशी का पारा चढ़ जाता कि हम अमर हैं। ऐसे तो पौराणिक साहित्य में पांच अमर लोगों का गायन है, जिसमें हनुमान अश्वत्थामा आदि है, पर ऐसे शारीरिक रीति से कोई तो अमर रहता नहीं है। जैसे उन्होंने दिखाया है शरीर का तो लिमिट है, जैसे बाबा ने लिमिट दे दिया कि सतयुग में इतने वर्ष हमारी दीर्घायुष्य होगी, परंतु शरीर तो जो लिया है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह एक चक्र है, बाल्य यौवन जरा मृत्यु का। इसका ज्ञान होने के कारण हम खुश रहते हैं कि हैं जितने दिन इस शरीर में उतने दिन हम हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारे लौकिक में हर एक इंसान, सारे विश्व में आप देखेंगे, रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़ा हुआ है, उसको उसकी ही चिंता है, किसी तरह दो जून रोटी मिल जाए, एक छत मिल जाए, खाने को दो कुछ मिल जाए, बस समझता है यही जीवन है और यही खुशी है। पर हम बच्चों को बाबा ने गारंटी दी है कि बच्चे तुमको दो जून रोटी तो जरूर मिलेगी, उसकी चिंता तुमको करनी ही नहीं है। कई बार मुरलियों में बाबा ये करता है, समझो आपने अपना सब कुछ यज्ञ में समर्पित कर भी दिया तो भी बच्चे भूखो नहीं मरोगे। आज तक समझिए यज्ञ यहाँ तक आते आते इतने वर्ष हो गए, तो 78 वर्षों की इस दीर्घ अवधि के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं दिखाई देता या हमें अनुभव सुनने को नहीं मिलता है कि किसी, जैसे इन दिनों में आप देखते हैं सब तरफ दीपावली का एक माहौल है, वायुमंडल है अभी भी, क्योंकि दीपावली होती है खुशी के लिए, और उसके विरुद्ध में मैं ये कह रहा था आज तक कोई ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान में आने के बाद वो कहे कि मेरी दिवाली नहीं दिवाला निकल गया। तो ऐसा दिवाला निकले वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। हाँ, यदि वह कभी इस श्रीमद की पटरी से नीचे उतर जाए, आत्मा की जागृति को, आत्मा की चेतनता को, आत्मा की अविनाशी भाव को यदि भूल जाए, देवी परिवार को भूल जाए या अपने आप को भूल जाए, तब कहीं जाकर के दिवाला मार सकता है। परंतु जो हैं इस ईश्वरीय यज्ञ में, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे कि ऐसा हमारा हाल बुरा हाल हो गया, हम बदहाल हो गए, ना ऐसे हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जिसके सर्व ऊपर तू स्वामी, उसका कौन क्या बाल बांका कर सकेगा, और जिसके ऊपर स्वामी की कृपा होती है उसके तो कहते दूधो नहाओ पूतो फलो, इतना लाभ उसको होता है, जो कभी भक्ति मार्ग में किसी ने सोचा नहीं होगा, इसीलिए भी हमारी खुशी का कोई पारावार नहीं होता है। ये जानते हैं हम लोग, सारे शास्त्र एक ही बात को ज्ञान देने के लिए हैं, और वो सब चाहते हैं कि व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान मिल जाए। को हम, जैसे आद्य शंकराचार्य ने पहले ही ये मुद्दा उठाया कि को हम, मैं कौन हूँ, कस्तव पिता, तेरा बाप कौन है, तू कहाँ से आया और तुझे जाना है कहाँ, और हमको ये पता है कि हम कौन हैं। बाहर में देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, हु एम आई, अभी तक भी ये पहेली किसी की बुझी नहीं है बाहर की दुनिया में, पर यहाँ कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ हैं, परंतु जानते हैं कि हम कौन हैं। हम इस शरीर के भीतर, इस शरीर के यजमान हैं, और बाबा हम बच्चों को टाइटल देते हैं कि बच्चे तुम बेहद के इस बेगमपुर के बादशाह हो। अब बेगमपुर बाहर की दुनिया में पता ही नहीं कि ये बेगमपुर क्या चीज होती है, और बेहद में वो भी, और फिर कहते हैं बाबा हमको कि तुम बच्चे बेफिकर बादशाह हो। तो बेफिकर बादशाह ऐसा कौन होगा जिसको फिक्र ही न हो सारी दुनिया में। एक न एक चीज की फिक्र रहती है, किसी को बच्चे की फिक्र रहती है, किसी को नौकरी की फिक्र रहती है, किसी को शरीर की फिक्र रहती है, किसी को परिवार की फिक्र रहती है, किसी को खेती की फिक्र रहती है, किसी को कुछ, किसी को क्या, फिक्रों से भरा हुआ मनुष्य है। परंतु एक हम हैं, सारी फिक्रात से ऊपर उठे और फ्राक दिल होकर के इस ईश्वरीय सेवा में अपना कणा दाना लगा करके धन्य महसूस करते हैं। खुशी तो तब होती है जब हम बच्चे बाबा के अपने इस महायज्ञ में अपना तन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो कहां से भी आ जाएगा, परंतु मैन पावर चाहिए, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैन पावर बहुत है। यहाँ इतने हम लोग सेवा में आए हुए हैं, सेवा करने में संलग्न हैं, तो ये जो सेवा का मेवा मिलता है ये बड़ा अनोखा अनूठा होता है। मैं समझता हूँ ये जो कहा जाता है, करो सेवा खाओ मेवा, रहो खुश और दो खुशी, तो ये जो मेवा है, मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ, आजकल के दुनिया में मेवा मावा सबको मालूम है, पर यहाँ जो बाबा कहता है मेवा मिलता है जिसमें मगजियात होते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, चिरंजी, गुड़, खोपरा, फुटन, ये सारा मिल करके बहुत हेल्थ के लिए जरूरी है, ऐसा मेवा बाबा हम बच्चों को खिलाते हैं। जो हम आत्माएं हृष्ट पुष्ट होती हैं, वहाँ शरीर के स्वास्थ्य के लिए योग किया जाता है कि शरीर ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि मन शरीर अच्छा तो मन अच्छा, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, और हम मानते हैं कि आत्मा खुश है तो शरीर आपो आप, जैसे कहते कि सीरत खुशी की है तो उसकी सूरत में खुशी की चमक आएगी, खुशी झलकेगी, और वह झलकने की खुशी दूसरे को भी खुश नुमा कर देगी, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए जब भी हम ये सोचते हैं कि हम आत्मा हैं, और केवल एक आत्मा नहीं है बल्कि परमात्मा की संतान है, केवल हम आत्मा नहीं है बल्कि अजर अमर अविनाशी हैं, केवल हम आत्मा नहीं है बल्कि बेहद के विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हम केवल आत्मा नहीं है बल्कि हम ईश्वरीय सेवा में रहने वाले हैं, केवल हम आत्मा नहीं है बल्कि ईश्वर के कार्य के मददगार आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं सारे विश्व में मात्र संगम युग पर होती, और वैसे हम हैं, इससे अधिक खुशी हमको और क्या मिल सकती है कि हमारा ये तन जो कल तक विकार के वश था, कल तक विकारी दुनिया में था, कल तक विकारी लोगों के लिए ही कार्य करता था, कल तक देहधारियों के लिए ही कार्य करता था, आज हम उसी तन को आत्मा की उन्नति के लिए और परमात्मा की सेवा के लिए उपयोग में लाते हैं। हम जो बैठते हैं, अभी जैसे हम बैठे हैं बाबा की याद करते हैं, तो तो बाबा की याद करना माना खुशी को सारे विश्व में प्रस्फुटित करना, खुशी को खुशी के स्पंदन का उत्पादन करना, खुशी की लहरों को विश्व में फैलाना, यह कार्य हम करते हैं योग के माध्यम से। क्यों? क्योंकि योग लगता है मुझ आत्मा का उस परमपिता परमात्मा से जो खुशियों का भंडार है, खुशियों का सागर है, खुशियों का बेहद का दाता है वह बाप। और वह इस सारे विश्व की करीब करीब 700-800 करोड़ आत्माओं में से हमको चुना। जो हम इन्हीं गिनी चुनी आत्माएं यहाँ हैं, हम अनुभव करते हैं कि हम बेहद के भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली का भाग्य कोई ऐसा नहीं बदनसीब यहाँ हो बैठा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाग्य की रेखा को बढ़ाने का जो नॉलेज है, ऐसे कहा जाता है कि ज्ञानमेव पराशक्ति। मनुष्य खुश होता है जब अपनी शक्ति का अंदाजा उसको होता है, और हम हैं परम शक्तिवान की संतान, ज्ञान रूपी परम शक्ति को प्राप्त हुई हुई आत्माएं। इसीलिए खुशी जो हमारे अंदर है, वह कोई लोग कहते हैं कि हम अंदर खुश हैं, नहीं, अंदर खुश होते हैं तो खुशी की लहर बाहर भी जरूर दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि अंदर खुश हैं, अंदर गंभीर हैं और बाहर में मुखड़ा, जिसको सादी भाषा में कहते हैं जल कुकड़ा, ऐसा मुखड़ा हमारा नहीं हो सकता है, गांठ भरा हमारा मुखड़ा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर में कंटिन्यूअस निरंतर सदा उस खुशी के फव्वारे निकलते रहते हैं, ताकि हम आत्माएं सारे विश्व में खुशी की लहरें फैला सके। हम लोग जो यहाँ इस मधुबन की धरा पर आते हैं, मधुबन माना स्वीट, एक ऐसा जहाँ जहाँ हर आत्मा अपनी स्वीटनेस को वापस लाने का प्रयास करता है। आत्मा है ऐसे स्वीट, सो स्वीट, सो नाइस। अब उस स्वीट आत्मा के अंदर कहाँ से कड़वाहट आ गई, कहाँ से दुख अशांति आ गई, आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति कोई आपके सामने कहेगा कि मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर खुशी नहीं है, तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि किसी को खुशी नहीं है तो कभी मनुष्य इसलिए नाखुश नहीं होता है कि उसके अंदर वीकनेस है, नाखुश इसलिए नहीं होता है कि उसके अंदर विकार है, नाखुश इसलिए नहीं होता है कि उसको क्रोध आता है, नाखुश इसलिए नहीं होता है कि उसको लोभ सताता है, मोह सताता है, ना, नाखुश इसलिए होता है कि सामने वाला व्यक्ति नाखुश, सामने वाला व्यक्ति क्रोध करता है, सामने वाला व्यक्ति गाली देता है, सामने वाला व्यक्ति देहाभिमान को प्रकट करता है, सामने वाला व्यक्ति गलतियां करता है, सामने वाला व्यक्ति विकारों से ग्रसित है, तब मैं नाखुश और दुखी होता हूँ। ये उल्टी गंगा है, क्योंकि वो तो जिसने जो विकारी है, जो क्रोधी है, लोभी है, मोही है, वो तो अपने आप में मस्त है, हम दूसरों का दुखड़ा लेकर के क्यों दुखी होना, यह प्रश्न कभी अपने से पूछेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि यह तो बात सच है, बाबा ने ऐसा आईना हमको दिया। एक ही शिव बाबा है जो हमको ज्ञान दर्पण देता है, और वो जो गीत बाबा का है, मुखड़ा देख ले प्राणी, और देखते हैं हम मनुष्य अपना मुखड़ा इस ज्ञान दर्पण में, तो यदि ये देखें कि इस शरीर, ये जो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा भाग्य है कि मैं इस, जैसे कहा जाता है नवद्वारे पुरा देही, ये देह है नवद्वार का, और इस पुराने देह को, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे इस पुराने देह और पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाओ तो तुम खुश हो जाओगे। खुशी का एक सबसे बड़ा नुस्खा आज बाबा ने मुरली में दिया कि पुरानी दुनिया से ममत्व को मिटाओ। क्यों? क्योंकि वो दुनिया दुख देने वाली है, वो दुनिया अशांत देने वाली है, वो दुनिया विकारों में खींचने वाली दुनिया है। इसीलिए बाबा ऐसे कहता है, खुशी चाहिए तो बाबा जैसे कुछ एक दिन पहले कहा कि जैसे बच्चे ये भोग बनता है, शिरा बनता है, जब वो पक जाता है तो अपना किनारे छोड़ देता है, ऐसे ही यदि हम भी इस देह और देह की दुनिया के किनारों से अपने आप को किनारा ज्ञान के आधार पर कर लें, अलगाव के आधार पर, दुख के आधार पर, बेजार होकर के नहीं करना चाहिए, बल्कि समझदारी के साथ यदि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा किनारा इस दुनिया से छूटता जाता है, तो आप पाएंगे कि खुशी अंदर में बरकरार रहती है, वो और ही बढ़ेगी खुशी, क्योंकि खुशी कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, कोई फूल से, कोई पत्तों से, कोई हरियाली से, कोई पैसे से, कोई वज्र वैडोर्य से, आभूषण से खुशी आने वाली नहीं है, बल्कि आने वाली है खुशी तो अंदर की हरियाली से, अंदर के ज्ञान के आभूषणों के अलंकार से, अंदर की समझ से आती है खुशी, क्योंकि आत्मा जो है वह ओरिजिनली खुश मिजाज है। यदि आत्मा दुखी होती तो दुख से आप देखेंगे कई बीमारियां पनपती हैं। आज सारी दुनिया में जो बीमारियों का बोलबाला है उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि मनुष्य दुखी है, और दुखी इसलिए है कि वह जो पाया हुआ है उसको मनुष्य नहीं देखता है, जो उसको लाभ हुआ है उसको नहीं देखता है, सामने वाले ने जो पाया, सामने वाले ने जो लाभ लिया उसको देखता है कि इसको मेरे से ज्यादा क्यों और कैसे मिला, इससे वो दुखी होता है। और फिर ये शरीर है, बाबा ये भी कहता है कि इस शरीर को चलाने की युक्ति सीखो, क्योंकि ये शरीर अब जर्जरित है, ये शरीर कलयुग का है, ये शरीर पुराना है, ये शरीर ऐसे कहा गया है कि शरीर, ये शरीर है ना, ये काम है, ये क्रोध है, ये रजोगुण समुद्भव, ये शरीर में ये काम का शरीर है, विकार का शरीर है, रजो ये देह से उत्पन्न होता है, इसलिए बाबा कहता है तुम देह से थोड़ा ऊपर उठो, माना देह चाहिए, बिना देह के आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती है, उसके लिए देह बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा ही गया है कि शरीरम, ये शरीर है धर्म साधना में आद्य साधन है, इसके बिना हम न योग कर सकते न ज्ञान सुन सकते। अभी यहाँ कोई बैठे हो, चलो बैठ जाते हैं, किसको कम सुनाई देता है तो हम एक बोलते हैं, वो एक सुनता है या नहीं सुनता है, परंतु हमारे इंद्रिय ठीक हो, क्योंकि ऐसे कहा गया है खुशी के लिए कि अहम इंद्रो, मैं इंद्र हूं न पराजिज्ञे, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं एक विजयी आत्मा हूं, तब जाकर के कहीं हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता है कि इस संगम युग पर मैं एक इंद्रियों का राजा हूं। वह इंद्र कोई आकाश में रहने वाला नहीं होता है, बल्कि हम ही इंद्रिय जीत बनते हैं, तभी हमको ही वह टाइटल मिलता है, अहम इंद्रो, मैं ही इंद्र हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तो बाबा भी, बाबा का साथ होगा तो हमको भी ये माया हरा नहीं सकती है, परंतु हम बाबा के साथ को भूल जाते हैं, बाबा साथ होता है पर हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ में कौन है, इसलिए कहीं कहीं दुख की अशांति की रेखाएं दृश्य कभी अनुभव करते हैं जीवन में। ऐसे नहीं कि हम नहीं ही करते हैं दुख का अनुभव, ना दुख का अनुभव करते हैं जब शरीर में फंसते हैं, हम दुख का अनुभव करते हैं जब विकारी आत्माओं के संबंध संपर्क में फंसते हैं, विकार में नहीं फंसते हैं, पर विकारी आत्माओं के, चाहे वो विकार समझिए काम का नहीं है पर क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, अहंकार का है, ईर्ष्या है, द्वेष है। आज जो ब्राह्मण जीवन हमारा है, कभी कभी ऐसे अनुभव होता है कि कहीं न कहीं ईर्ष्या, कहीं न कहीं द्वेष, असूया, ये भावनाएं हमारे अंदर में हैं जो हमको दुखी करती हैं। न चाहते हुए भी हमें मायूसी का अनुभव होता है, न चाहते हुए भी ऐसे लगता है कि हमने माया के सामने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा है, वास्तविकता ऐसी है। इसीलिए बाबा ये कहता है कि भाई तुमको यदि इन खुशी में ही रहना है तो फिर इन बातों से उठो। और दूसरी बात यह भी है कि हम खुशी के लिए ये कहा गया कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वह नाटक के पात्र के अनुसार कर रहा है। इसकी समझ मेरे अंदर जब कम हो जाती है तो मेरी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वह तो अपना पार्ट जरूर करेगा ही करेगा, चाहे मैं चाहूं चाहे मैं न चाहूं तो भी वह पात्र करेगा ही। क्यों? कि वैसा उसको डायरेक्शन मिला हुआ है, वो करेगा ही करेगा। और अब मुझे जो करना है मुझे सोच के करना है, यदि मैं करूं सोच करके तो मेरी खुशी का पारावार नहीं रहेगा, कोई खुशी का ठिकाना नहीं। मानते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं है, और खुशी जैसी खुराक माना वही मेवा। अब ये खुशी कहाँ से बाहर से नहीं ला सकते हैं, हमको जो खुशी मिलनी है वो हमारे ही अंदर से हमको बाहर इमर्ज करनी है, इमर्ज। क्योंकि उसको कहा जाता है कि खुशी एक हिडन पोटेंशियलिटी है, उस जो छुपी हुई खुशी है अंदर में बाबा बैठ करके उसको निकालता है। बाबा क्या करता है, बाबा और कुछ नहीं करता है बल्कि अंदर की खुशी को बाहर निकालता है। आत्मा खुशियों का भंडार है, क्योंकि आत्मा सतयुग से लेकर के पात्र करती है, तो सतयुग की देवताओं के मुखड़े में उनकी मूर्तियों में उनके चित्रों में हम उस खुशी को देखते हैं। उनका जो मंदस्मित भाव मुस्कुराहट भरा चेहरा देखने को मिलता है तो वो कहां से उस चित्रकार ने देखा, क्योंकि चित्रकार ने तो लक्ष्मी नारायण को देखा नहीं, चित्रकार ने तो कृष्ण को देखा नहीं, चित्रकार ने तो सीताराम को देखा नहीं, क्योंकि वहां देखा हुआ व्यक्ति आकर के द्वापर में कोई चित्र निकाले ऐसा भी नहीं हो सकता है। बल्कि वो देखते हैं संगम पर, और सीधे संगम की स्मृतियां लेकर के द्वापर के बीच में वो बाहर आती हैं, क्योंकि द्वापर के पहले भाग में और दूसरे भाग में ऐसी कोई दुख की बात नहीं रहती है जो मनुष्य बाहर निकाले, क्योंकि वहां भी सुख है ही है। क्योंकि दुख द्वापर से एकदम ऐसे शुरू नहीं होता है, जैसे कहे बाबा विकार धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, विकारों का जैसे प्रवेशता बढ़ती जाती है ऐसे दुख बढ़ता जाता है। और ये विकार और कुछ भी नहीं है बल्कि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूलती जाती है। जैसे अभी हम ओरिजिनल स्वरूप को याद करते हैं और याद कराने वाला रोज कराता है, और जब हम जो मुरली ये कहा जाता है, आज भी मुझसे एक ने कहा कोई हम मुरली मोबाइल में पढ़ते हैं आईपैड में पढ़ते हैं या मुरली पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा सुनते हैं, बहुत अच्छा है, नथिंग इज वो कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। परंतु जब हम क्लास में मुरली सुनते हैं, जो बहन हमको मुरली सुनाती है, तो कहा गया कि उस बहन के माध्यम से हमको बाबा डायरेक्ट शांति सुख का खुशी का वर्षा देता है, क्योंकि आंखें काम करती हैं सीधी। माना कि जैसे अब हम बाबा के कमरे में जाते हैं तो बाबा की आंखें हमें खींचती हैं, न चाहते हुए खुशी का वरदान देती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु सामने मुखामुखी जब दादियों के बैठते हैं तो वो जो मजा आता है उनके, आज जैसे बाबा ने कहा कि बाप आता है नजर से निहाल करने के लिए, तो वो नजरे क्या कहा जाता है, नजरे इनायत जो बाबा करता है ना, कृपा दृष्टि जो बाबा की पड़ती है वो बड़ी वंडरफुल होती है, वो बड़ी सुखकारी होती है, वो पावन बनाने वाली होती है। ऐसी दृष्टि हम उस समय लेते हैं, चाहे वो कोई भी होगी, बहन छोटी है कि बड़ी है, पुरानी है कि नहीं है, परंतु उन आंखों से बाबा देखता है, बाबा हम बच्चों को निहारता है, बाबा हम बच्चों को निहाल करता है, यह भी हम अनुभव करना चाहिए, ये भी एक वंडरफुल अनुभव है संगम युग में जो हम बच्चे करते हैं। तो इसीलिए यहाँ जब मधुबन में आते हैं तो वो हमको लाभ होता है कि सीनियर बहन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर की दुनिया से विकारों से विकारी लोगों के संपर्क से दूर होकर के जितने वर्ष होते जाते हैं जितनी उसकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है तो उसके अंदर वो ज्ञान का नशा, वो ज्ञान की खुशी भी भरती जाती है और उनके माध्यम से फिर हम लोगों को भी मिलती है। क्योंकि संगम युग कहा ही जाता है, लेन देन का युग है। हम यहाँ खुट्टी कौड़ी देते या कखपन देते, उससे वापस में हमको लखपन मिलता। हम बाबा विश्व क्या कहता है, बाबा पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली माना हर कदम में पदम, माना हर कदम में हम इतनी खुशियों को लुटाते, ये भी एक संगम युग की प्रारब्ध है, प्राप्ति है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे एक संगम युग ऐसा युग है जहाँ तुम दोनों ही युगों को जानते हो, इधर सतयुग है और इधर कलयुग है। कलयुग की दुख, कलयुग की अशांति, कलयुग के रोग, कलयुग की मारामारी और कलयुग में जो लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे दौड़ी जो लगाते हैं उनको भी देखते हो, और एक इधर सतयुग है जहाँ सुख की बंसुरी बजती, जहाँ शांति की लहर होती, जहाँ आनंद का माहौल होता, जहाँ सोने के महल होते, जहाँ दूध घी की नदियां बहती, जहाँ शेर और बकरी एक स्थान पर पानी, ये भी हमारे सामने ओपन चित्र है, दृश्य है। और यहाँ बीच में हम हैं संगम पर, जहाँ बाप भगवान बैठ करके प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से नई सृष्टि के जो संकल्प किया हुआ है उसको भी पुख्ता करने के लिए मेहनत चालू है। प्रजापिता ब्रह्मा ने संकल्प कहा ना कि ब्रह्मा नई सृष्टि को रचते हैं, तो फिर ब्राह्मण क्या करते हैं? खुशी होती है तब जब हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण भी उस ब्रह्मा के संकल्प को साकार करने में सिद्ध हस्त होते हैं। कहा भी गया कि हमने प्रार्थना की वैदिक साहित्य में कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा वह मन शिव संकल्प के लिए संबंधित हो, शिव संकल्प करने में जुट जाए। माना क्या कि मैं वैसे ही संकल्पों की रचना करूं जिससे कि शिव के कार्य की सिद्धि हो। तो आप कहेंगे कि शिव स्वयं सिद्ध है, शिव बाबा क्या भी कर सकता है, शिव बाबा सर्वशक्त है। माना, पर भगवान खुद कहता है ना कि मैं बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। और एक अभी इसी अक्टूबर मास की मुरली में बाबा, जब ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा मैं नए दुनिया के गेट खोलूं, तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पूछते हैं कि अकेले ही जाओगे या सबको लेकर के जाओगे? ये सबको लेकर के जाना है तो सब में उतनी तैयारी करानी पड़ेगी ना, सब उतने तैयार। बारात निकलती है तो बाराती चाहिए ना, प्रसिद्ध है शिव की बारात, तो बारात निकलती है तो बाराती चाहिए, और बाराती चाहिए तो बाराती भी उसी ढंग के चाहिए जैसे दूल्हा होता है। दूल्हा यदि श्रीमंत है तो बराती भी कोट बूट वाले होते हैं, वो भी सज धज करके वैसे ही निकलते हैं, कोई भिकमंगे नहीं होते हैं। तो ऐसे यहाँ भी शिव जब सर्वशक्त है, शिव जब ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का सागर है, तो उसकी जो बारात होगी वो भी वैसे ही संपन्न होगी ना। यह भी जब सोचते हैं इस दृश्य को तो लगता है कि हम भी वैसे बाराती बनेंगे। हमको भी बाबा उस तरह से तैयार करता जाता है बारात, तो अपनी बारात खुद वो भी तैयार करते हैं, तब भी लगता है कि हाँ ये भी एक अनोखा अनुभव हम बच्चों को होता है। तो बाबा इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा सर्वशक्त जरूर है परंतु बच्चों की शक्ति भी कोई कम नहीं है, क्योंकि विश्व बहुत विशाल है, जिसके कैसे सप्त समुद्र वत्या ऐसे बोला जा रहा है कि यहाँ सात समुद्र का इतना बड़ा प्रपंच है, दुनिया है। तो इस सारी दुनिया को, मनुष्यों को नहीं बल्कि प्रकृति को भी पावन करना है, क्योंकि प्रकृति भी पावन चाहिए। आज प्रकृति भी पतित है जो मनुष्य को दुख देती है, और वही पतित प्रकृति के माध्यम से शरीर बना हुआ है, तो ये शरीर भी दुख देता है यदि मनुष्य इसमें फंसता है। तो यदि वह ये समझ ले कि मैं ऐसे कहा गया कि मैं इस शरीर रूपी साधन का सिद्धि पुरुष हूँ, सिद्ध पुरुष हूँ, तो फिर खुशी होगी कि ये शरीर अब मेरे काम आ रहा है। कल तक मैं इसके अंदर फंसा रहा था, अच्छा अच्छा देखूं, अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा सुनूं, अच्छा अच्छा पहनूं, अच्छा सब अच्छा अच्छा शरीर के लिए मनुष्य सोचता था। उसका नतीजा फिर यह हुआ, आज बैठे बैठे कोई ने कहा कि आज देखिए दुनिया में बीमारियां फैल रही है, तो उसमें भी दो बीमारियां बहुत प्रसिद्ध है। हमने कहा कि भाई उसका ये कारण है, क्योंकि हमारे को कोई काम नहीं है, हम बैठे बैठे हैं। पहले भी लोग बैठते थे ना, कहते हैं हजारों वर्ष हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो बैठे बैठे ही करते थे, परंतु वो खाली नहीं बैठते थे, ऐसे ही नहीं बैठते थे, उनकी बैठक में उनका तप था और वो तप में उनके अंदर की बुराइयां खपती थी। और जैसे कहा जाता है कोई चीज को तपाया जाता है तो उसमें से कश्मल निकल जाता है, जैसे सोने को तपाया जाता है तो सोने के अंदर का कचरा निकल जाता है और शुद्ध सोना बच जाता है। तो तप ऐसे ही बैठना अलग बात है, व्यर्थ में बैठना अलग बात है, देह के अभिमान में बैठना अलग बात है, देह की दुनियादारी की बातों में लगे रहना अलग बात है, परंतु आत्मा के चिंतन में बैठना, उसमें क्या होता है, उसमें जितना हम आत्मा के चिंतन में बैठते हैं उसमें हमारे श्वास ऑटोमेटिकली दीर्घ होते जाते हैं, देह के ओर हमारा आकर्षण कम होता जाता है। तो वो स्थिति ऑटोमेटिकली न केवल खुशी उत्पन्न करती है बल्कि खुशी इतनी कायम करती है कि वह आगे आने वाले 2500 वर्ष तक पूर्ण मात्रा में रहे और बाद में घटती जाए धीरे धीरे, और वह कलयुग के अंत तक खुशी चले। और मैं कई बार अनुभव सुनता हूं भाई बहनों से कि हम जो भी हैं बाबा के बच्चे आज, ये कोई अति दुखी अति रोगी अति विकारी नहीं है, उतने उतना ही है, ज्यादा हमको कोई इतना दुख नहीं हुआ। जैसे कई राष्ट्रों में आज हम देखते हैं भुखमरी है, उनको वस्त्र नहीं है, रहने को छत नहीं है, हालत बुरी है, बहुत बुरी है, बुरी नहीं बहुत बुरी है। वैसी हम आत्माएं नहीं है, क्योंकि हम आत्माएं वो आत्माएं हैं जिन्होंने वर्तमान कलयुगी जो लहर है उस लहर के अगेंस्ट द करेंट, ऐसे मानते हैं हम, उसके विरुद्ध दिशा में हम चल रहे हैं। सारी दुनिया जिस ओर भाग रही है उसके विरुद्ध में हम भाग रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि सारी दुनिया में आज देखेंगे आप जो चकाचौंध है, वैज्ञानिक अनुसंधानों का कहिए और भी साधन जो संसाधन विश्व में है उनका देखिए, तो मनुष्य विकारों की ओर इतना आकर्षित है कि उसका कोई हिसाब नहीं लगता है कहीं भी। और मैं कई बार कहता कि भाई वो जो गायन है कि हमारे जो पूर्वज थे वो नंगे रहते थे, हमारे पूर्वज सतयुग में हैं, देवी देवताएं हैं, उनको फुल ड्रेस है और हम आज संगम युग तक भी फुल ड्रेस में बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो नंगे हमारे पूर्वज थे आज भी वो नंगे घूम रहे हैं, वो पूर्वज हमारे पूर्वज नहीं है, वो कलयुग वाले हैं, फिर कलयुग में ही आएंगे। बाबा ने जैसे कहा कि भाई दीपावली को सवेरे मच्छर पैदा होता है, रात में मर जाता है, ऐसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा आप बच्चों को ऐसे ही ले नहीं जाएगा शांति धाम में। खुशी की बात यह है कि सारे जितनी आत्माएं शांति धाम में हैं उन सबको नीचे उतार देगा कि भाई सब नीचे खाली हो जाओ। सारी आत्माएं जब नीचे आएंगी तब बाइज्जत हमको बाबा शांति धाम में ले जाएगा। खुशी की बात यही है कि बाबा हमको अब वापस लेने के लिए आया हुआ है। सारी दुनिया मरने से डरती है और भगवान हमको मरना सिखाता है, और जितना हम मरते हैं उतनी हमारी खुशी बढ़ती है। जितना किससे मरेंगे, अपने अहम शरीर के अहम से, शरीर के संबंधियों के अहम से, शरीर के ओहदे जो होते हैं पोजीशंस के, उससे जितना हम मरते हैं, तो ये भी एक बाबा की कमाल है जो हम बच्चों को रोज रोज बाबा ऐसी शिक्षा देते हैं। कौन ऐसा होगा जो बैठ करके करीब करीब 78 साल तक एक ही मंत्र देता है कि बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आज हमारी दादियां हैं जो भी हैं, तो 78 साल से यही पुरुषार्थ कर रही हैं कि हम आत्मा हैं। बच्चे यही पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ है। यह पाठ जब पूरा होगा तब आत्मा में वो खुशी जम जाएगी, जैसे बाबा कहते हैं जम जाएगी, जो फिर आगे चल करके खुशी खुशी रहेगी। अभी थोड़ा नीचे ऊपर होती है मानते हैं, परंतु फिर भी खुशी का पलड़ा भारी ही होता है। ऐसे नहीं दुख आता है तो कहा जाता है दुख हमारे लिए कोई पत्थर की लकीर नहीं है, दुख हमारे लिए वाटरमार्क जैसे है, पानी पर लकीर, आया भी आया और गया। कोई आपको पूछेंगे कि आपको दुख नहीं होता है, हाँ होता है, दुख तो होता है, परंतु पत्थर पानी की लकीर की तरह होता है, आया आया और गया। लोगों में दुख इतना होता है कि सालों मातम मनाते हैं, बाबा कहता है साल हाय हाय करते हैं, परंतु यहाँ हाय हाय की बात होती नहीं है, क्योंकि खुशी का पलड़ा भारी है, खुशी ज्यादा हम बच्चों को है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये सोचते हैं आनंद की जैसे देखते हैं, फिर भी खुशी है तो नाखुशी है, सुख है तो दुख है, शांति है तो अशांति है, परंतु बाबा हम बच्चों को आनंद का सागर बना देता है, ऐसा आनंद जिसके विरुद्ध में कोई पद नहीं है, सबके साथ एक एक विरोधाभास वाला शब्द है पर आनंद के साथ कोई विरोधाभास वाला शब्द नहीं है। इसीलिए साधु संन्यासी लोग भी ऐसा आनंद शब्द प्रयोग अपने नाम के साथ करते, तो बाबा कहता मैं तुमको आनंद का सागर आनंद देता हूँ। तो आनंद के सागर में हम बच्चे रहते हैं, तो जो उस सागर में बाबा कहते हैं डूबे रहो, उसमें डूबे रहो, डुबकी लगा करके बाहर भाग करके मिट्टी में मत आओ। मिट्टी में आना माना दुख को लेना, देह में आना माना दुख का अनुभव करना। इसलिए एक खुशी होती है कि हम एक आत्मा है, ये हमको ज्ञान मिला। सारी दुनिया में कितने फिलोसफर थक गए ये सोचते कि ये आत्मा क्या चीज है, उनकी समझ में नहीं आई ये शरीर में कैसे आती है और कैसे शरीर से जाती है, इसका अभी भी उनको आभास अनुमान नहीं लगा पाए हैं। जबकि हमको पता है कि शरीर में मैं कैसे आता हूँ और शरीर से कैसे निकल जाता हूँ। तो अब हम जैसे दादी जानकी कई बार कहती है कि मैं शरीर से कैसे निकलूं, आप अनुभव करते हैं, जैसे बाबा आने के टाइम पर दादी गुलजार एक झटका लेती है तो वो कहते मैं ऐसे ही शरीर छोड़ करके चली जाऊंगी। तो ऐसा एक माहौल, ऐसा एक विश्वास हम बच्चों के अंदर बाबा बनाता है कि हम भी ऐसा शरीर छोड़े। हालांकि देखा ये जा रहा है, कई हमसे पूछते हैं कि भाई ये जो बीमारियां होती हैं हम ब्राह्मण आत्माओं को ये क्यों होती है, जबकि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, जबकि हम बेगमपुर के बादशाह हैं, जबकि हम बेफिकर बादशाह हैं, तो ये बीमारी इसलिए हो रही है कि अंदर के दुख के जितने भी अनुभव हैं वो सब बाहर निकल जाएं। क्योंकि आत्मा में क्या थी, मैंने क्या किया, इसका आभास मुझे नहीं है। इसीलिए बीमारी भी एक तोहफा है, बीमारी को बीमारी न समझ करके वो आत्मा को मारने वाला एक प्रक्रिया समझे, या आत्मा के अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने वाली प्रक्रिया समझे, तो जाकर के वो भी आनंद का एक अनुभव कराती है। हिसाब किताब चुप तो होता है। आप फिर भी मैंने कई बार देखा है, कई बीमार भाई बहनों से मिलते हैं तो उनकी खुशी भी होती है, वो खुश होते हैं, रोग का वर्णन नहीं करते हैं कि मुझे ये बीमारी नहीं, बल्कि वो खुश होते हैं, ओम शांति बोलते हैं, मेहनत पूरी कोशिश करते हैं कि चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए, ये भी कोई कम बात नहीं है। हम लोगों के लिए ये ऐसा प्रयास तो हम करते हैं कि हम नाखुशी न जाहिर करें, परंतु होता भी ऐसे ही है कि जैसे दुनिया में अनुभव करते हैं दुख अशांति का, ऐसे हम नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर से अब हमारे एक शांति का प्रस्फुरण हो रहा है, शांति का फव्वारा छूट रहा है, शांति का आनंद का जिसे हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। इसीलिए ये जो बाबा की हम फिर कहेंगे कि हमारी खुशी का जो खजाना है वह है बाबा की मुरली, क्योंकि ये मुरली ही संजीवनी बूटी है, ये मुरली ही हमें तेज देती है, आनंद देती है, सुख देती है, प्रेम देती है, पवित्रता देती है, शक्ति देती है, क्या नहीं देती है। इसीलिए बाबा कहता है मुरली से प्यार तो मुरली धर से प्यार होता है, क्योंकि भगवान बाप के महावाक्य हमको सुनने को मिलते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इसका जितना भी हम पढ़ाई में ध्यान देंगे, मुरली की एक एक, आज दादी रतन मोहिनी कह रही थी कि हम जब मुरली पढ़ते थे तो मुरली में के पॉइंट्स अलग अलग निकालते थे, ज्ञान के अलग, योग के अलग, और वो बाद में जब पढ़ते थे तो उनसे हमको बेहद की खुशी मिलती है, क्योंकि एक ही टीचर एक ही बार ज्ञान भी सुनाता है, योग की बातें भी बोलता है, धारणा की बातें भी बोलते हैं, और फिर सेवा की भी प्रेरणाएं देते हैं। और कई प्रश्न जो बाबा अव्यक्त वाणी में पूछते हैं, दादी कह रही थी कि वो भी हम अलग अलग लिखते थे ताकि वो प्रश्न भी उत्तर देने वाले होते हैं, क्योंकि बाबा के प्रश्न प्रश्न नहीं होते हैं बल्कि वो एक अनोखे उत्तर होते हैं, जो बाद में हम पढ़ते हैं तो लगता है कि यहाँ खुशी का खजाना जैसे हमको मिल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे वो दादी कह रही थी बाबा के शरीर, दादी जान की कल शाम में कि बाबा के शरीर त्याग, साकार बाबा के शरीर त्याग करने के 5 साल पहले की हमारी मुरलियां हैं, हमने सुनी भी और कई बार पढ़ी भी और पढ़ते भी रहते हैं, फिर भी हमको एक नया नई लहर मिलती है, नई चेतना मिलती है, आत्मा को एक नई शक्ति मिलती है, आत्मा में एक आनंद का पवित्रता का आभास होता है, क्योंकि मैं जो आत्मा हूँ इस शरीर में वह अभी इस संगम युग पर अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। सतयुग में ऐसे हम आत्मा अभिमानी होते हैं, द्वापर में परमात्मा अभिमानी होते हैं, कलयुग में कुछ नहीं होते हैं, संगम में आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो खुशी की है वह है ड्रामा की। ये जो बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की ढाल दी है, इसको सदा हमारे साथ रखें तो कोई भी दुख अशांति का वार नहीं होता है, क्योंकि ढाल जो उपयोग में आती है ना, तो वह आती ही है दुख अशांति सेफ्टी के लिए। तो ऐसा सेफ्टी का साधन बाबा ने हमको ये ढाल, ड्रामा की ढाल दी है। दादी जानकी कहती है ड्रा माँ है, ये भी एक माँ जैसे लालन पालन करती है बच्चों को, ज्ञान बच्चों को दूध देती है, तो ऐसे ही ड्रामा का ज्ञान भी एक दुग्ध की तरह है। ऐसे माना गया कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, सारी भी उपनिषद साहित्य वैदिक साहित्य गाय वो दुहता है, और वो ज्ञानामृत दुग्धामृत हमको मिलता है। तो ऐसे ही शिव बाबा के ज्ञान को जो दूध के रूप अमृत के रूप में दुग्धामृत के रूप में हमको मिलती है, तो इस मुरली से मिलती है। जितना जितना इसका सेवन करेंगे उतना उतना बीमारियों से भी दूर होंगे, और हमारे अंदर शक्ति भी आएगी और हम इस शरीर को चला भी पाएंगे, क्योंकि ये शरीर कैसा भी है संगम युग का भागीरथ है। जैसे ब्रह्मा को ब्रह्मा बाप के शरीर भगीरथ हुआ, ऐसे ही हम बच्चों का ये शरीर भी भगीरथ है, और इस रथ के माध्यम से हम अपन आत्मा को श्रेष्ठ बनाते हैं, न केवल बल्कि इस विश्व को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। यह विश्व भी एक रहने लायक दुनिया बन जाती है जहाँ सुख शांति आनंद होता है। तो ऐसी खुशी हमको है कि हम सारी दुनिया में खुशी का माहौल लाने के लिए निमित्त बनते हैं इस शरीर के माध्यम से, तो कम बात नहीं है। वही हम सागर के बच्चे हैं जो 60,000, जैसे कहा गया सागर के 60,000, तो गिनती लगाई उन्होंने 60 सेकेंड 60, तो 60,000 सागर के बच्चे जाग गए, उनको नया जीवन मिला। तो वही हम सागर के बच्चे हैं जिन्हें हमें नया जीवन मिला है। हम अरे खुशी का पारा इसलिए भी नहीं रहना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम ही वो बच्चे हैं सागर के जो अब नए जीवन में जी रहे। ये हमारा नया जीवन है। कलियुगी जीवन, दुखी जीवन, अशांत जीवन, विकारी जीवन, देहाभिमानी जीवन, जातीयवादी जीवन, भाषावादी जीवन, इससे भी दूर हट करके आज हम एक ईश्वरीय परिवार में जी रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी कहलाने के जीवन में जी रहे हैं। यह भी एक नशा जो बाबा हम बच्चों को चढ़ाते हैं, और यदि इस नशे को ऐसे ही अंदर में बरकरार रखें, बार बार स्मृति पटल पर लाएं, जैसे गीता में कहा गया कि पुनः पुनः ऋष्यामि, वो संस्मृत्य उसको सोच सोच करके मैं खुश होता हूँ। ऐसे ही इस ज्ञान के हर बिंदु को हम सोच सोच करके, स्मृति में ला ला करके अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं, अपने आप को बेगमपुर का बादशाह समझते हैं, अपने आप को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में अनुभव करते हैं। तो ये एक रस स्थिति, माना चढ़ी हुई खुशी की स्थिति जो हम बच्चों को चाहिए वो बाबा अब दे रहा है, इसका भी हम अनुभव करें। दीपावली है, मनुष्य को खुशी चाहिए तो पैसा चाहिए, और वो लक्ष्मी देती है, तो हम संगम युग में ये भी अनुभव करें। मैंने इस बारी एक बात सबसे कही कि सबके पास खड़ी लक्ष्मी मिलती है, ठहरी हुई, पता नहीं कब बाजू वाले घर में चली जाए, पर हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे पास वह धन लक्ष्मी भी, ज्ञान लक्ष्मी तो है ही है, धन लक्ष्मी भी ठहरी हुई नहीं बल्कि आराम से बैठी हुई नजर आएगी। यह भी अनुभव करना चाहिए कि हमारे पास धन लक्ष्मी बैठी हुई है, और वह लक्ष्मी आज उद्यत है सरस्वती बनने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि फिर सरस्वती ही जाकर के सतयुगी नारायण की लक्ष्मी बनेगी। इसीलिए ऐसी खुशी का एक स्मरण, चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन हम करेंगे और खुश रहेंगे, और एक खुशी की दुनिया का निर्माण करने में बाप दादा की मदद करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
जिंदगी हमारी।